ओम शांति। ये पहला ही सुअवसर है कि अलग से कुमारों की भट्टी मधुबन निवासी हमारे सचिन भाई जी के द्वारा हो रही है। ऐसे तो समय समय पर बहुत भाई आते रहे हैं, बहनें भी आती रही हैं, भट्टियां कराती रही हैं, पर अलग से भट्टी हो कुमारों की वो अवसर नहीं आया। पर आज वो दिन आ गया है कि आप सबको हमारे इतने अपना जीवन बनाकर सैंपल रूप में आपके सामने पहुंचे हैं, और जो भी सुनाएंगे वो जैसे इनका जीवन बोलने वाला, तो कितनी आपको शक्ति मिलेगी और कितना बल मिलेगा ये आप खुद ही अनुभव करेंगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अलग से आपका भाई जी ने प्रोग्राम बनाया है, और इस कार्यक्रम के लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। और आप सब ने भी उत्साह से यहाँ पहुंचकर भाग लिया है, उसका भी मुझे उसकी भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। और जितने उत्साह से आप यहाँ पहुंचे हैं उतने ही उत्साह से आप सारी बातें रिसीव करेंगे और अपना जीवन एक आदर्श कुमार जीवन बनाकर बाबा की सेवाओं में सहयोगी बने रहेंगे। तो भ्राता सचिन जी अब आपका अच्छे से श्रृंगार करेंगे और आपको बहुत कुछ अनुभव कराएंगे, और हम भी इस भट्टी की जरूर खुशबू लेते रहेंगे। ओम शांति सचिन।
ओम शांति। आज की इस भट्टी की शुरुआत हम एक टॉपिक से करेंगे जिसका शीर्षक है तप की नींव ब्रह्मचर्य। तप की नींव ब्रह्मचर्य। शुरुआत शास्त्रों में लिखी एक कहानी से करते हैं। किसी घने जंगल में एक बार एक युवा सन्यासी तप करता था। संपूर्ण वैरागी और तपस्वी रोज तप करता, और हर दिन उसकी तपस्या और कठोर और तीव्र होती थी। ऐसा वो सन्यासी अकेला बैठकर तप करता था। धीरे धीरे भोजन उसने छोड़ दिया था, फल खाता था, धीरे धीरे फल भी त्याग कर दिया था। ऐसा वो सन्यासी एक वीरान जंगल में तपस्या करता। तो जैसे शास्त्रों में हमेशा ही दिखाया है कि जब भी संसार में कोई तपस्या करता है इंद्र का सिंहासन ऊपर डोलने लगता है, उसी जंगल में एक ऋषि कन्या रहती थी जो कि अति क्रूप थी, परंतु इंद्र को जब भय लगा इस सन्यासी की तपस्या का, तो एक दिन जब वह ऋषि कन्या किसी सरोवर में जल भर रही थी, तो जल के स्पर्श से ही उसका रूप बदल गया और अति रूपवती वो बन गई। ये इंद्र ने ही अपने ही किसी जादुई शक्ति से कर दिया। एक दिन उस कन्या ने उस युवा सन्यासी को देखा और उसको लगा कि इतना तपस्वी योगी पुरुष है, इसकी सेवा करनी चाहिए। तो इसी शुद्धतम लक्ष्य के साथ उसने सोचा, मैं इसकी सेवा करूं, और वो सेवा करने लगी। परंतु उसके मन में लक्ष्य ये भी था कि ये सन्यासी मुझे ना देख पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसकी तपस्या भंग हो जाए। इसके लिए वो उसके लिए फल रखती, जल रखती, परंतु स्वयं को छिपाए रखती। सन्यासी अपनी तपस्या में मगन था, उसे यह पता ही नहीं था कि कोई है आसपास या कोई उसकी सेवा कर रहा है। फल देखता था, खा लेता था, जो भी भोजन वहां रखा होता वो खा लेता। कई दिन बीते, वो ऋषि कन्या उसकी सेवा करती रही इसी लक्ष्य के साथ कि वो मुझे न देखे। पर एक दिन जब वो फल रख रही थी, अचानक उस तपस्वी की आंखें खुलती है और वो उसे देख लेता है और फिर आंखें बंद कर लेता है और फिर तपस्या में मगन हो जाता है। वह स्त्री अपने घर जाती है और उसे बहुत आत्मग्लानी होती है कि उसने मुझे देख लिया, शायद उसकी तपस्या मैंने भंग कर दी केवल देखने मात्र से। परंतु अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी भी होती है कि उसने देखा तो, परंतु आत्मग्लानी अधिक होती है। तो सोचती है कि मैं अब इस जंगल में नहीं रहूंगी, और वो स्त्री रातों रात उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। सन्यासी अपनी तपस्या में मगन, अब अपनी तपस्या को और सघन और कठोर करते जा रहा था। बाह्य जगत का, बाह्य संसार का उसे कोई भान नहीं था। लंबा लंबा समय ध्यान मग्न अवस्था में बैठता चुपचाप। दिखाया है कहानी में, शास्त्रों में, कि ऐसी तपस्या देखकर इंद्र स्वयं प्रकट होता है एक दिन, और इंद्र उससे पूछते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। बाह्य संसार से संपूर्ण जैसे उसका संबंध टूट चुका था। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। वो कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंद्र कहता है, नहीं, इतनी कठोर तपस्या तुम कुछ तो लक्ष्य से कर रहे होंगे। क्या चाहिए तुम्हें, क्या तुम्हें स्वर्ग चाहिए? मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य देने के लिए तैयार हूं, ले लो। इसीलिए तो करते हैं सभी ऋषि तपस्या, तुम इस राज्य को ले लो। वो कहता है, मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। इंद्र कहता है, फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मोक्ष चाहिए तो मैं तुम्हें मोक्ष भी दे सकता हूं। वो कहता है, मुझे मोक्ष की भी कामना नहीं, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। इंद्र को आश्चर्य होता है, यदि तुम्हें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? मैं क्या दूं तुम्हें? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा आज तक। वो सन्यासी, वो तपस्वी कहता है, वो स्त्री कहाँ है? कहानी यही पूरी होती है। चित्त में वासनाएं छिपी है, अवचेतन की गहराई में जन जन के भोग के संस्कार है। आत्मा संपूर्णता के पथ पर चलने निकलती है और एक भयंकर संघर्ष वहां होता है। मुरलियों में सुनते हैं सभी, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। हजारों बार सुना, एक कान से सुना और दूसरे कान से गया, उसका असर होना बंद हो गया है। कोई भी बात, साइकोलॉजी में कहा जाता है, अगर बार बार वही बात बताई जाए तो असर कम होता है। गहराई में मन की कुछ वृत्तियां है, कुछ संस्कार है, कुछ संकल्प है जो छिपे हैं, और जैसे ही आत्मा संपूर्ण ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करती है, एक संघर्ष उत्पन्न होता है। क्या इस संघर्ष से मुक्त हुआ जा सकता है? यदि संपूर्ण पवित्रता लक्ष्य है और उस संपूर्ण पवित्रता का जो आधार स्तंभ है वो ब्रह्मचर्य है, तो क्या ऐसा संपूर्ण ब्रह्मचर्य धारण किया जा सकता है? ब्रह्मचर्य की बाबा ने कोई दूसरी परिभाषा बताई है ब्रह्मा के आचरण के लिए, परंतु आज की क्लास में हम वह चर्चा नहीं कर रहे। आज की क्लास में हम पवित्रता की चर्चा नहीं कर रहे। पवित्रता का जो आधार स्तंभ है ब्रह्मचर्य, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता बहुत ऊंची अवस्था है। मन, वचन, कर्म, संकल्प, स्वप्न में भी पवित्रता, साधारण संकल्प भी अपवित्रता है। ये पवित्रता की परिभाषा है। ब्रह्मा ने जो आचरण किया वह ब्रह्माचर्य, वह पवित्रता है। परंतु आज की क्लास में हम चर्चा जो करेंगे वो ब्रह्मचर्य की चर्चा करेंगे। शायद बाबा ने ज्यादा चर्चा हमेशा पवित्रता की है, ब्रह्मचर्य की थोड़ी कम चर्चा की है मुरलियों में। परंतु कुमार जीवन या कुमारी जीवन, उसका आधार यदि पवित्रता है, तो पवित्रता का भी आधार क्या है? ब्रह्मचर्य। पवित्रता की जो मंजिल है, जो इमारत है, उसका, उसकी नींव कहो, उसका फाउंडेशन कहो, वह शिलान्यास, वह रॉक, वह फाउंडेशन स्टोन जो है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की बहुत सारी परिभाषा है। एक परिभाषा जो कही गई है वह है, जो जगदीश भाई ने अपनी किताब में भी लिखी है, वह आचरण ब्रह्मी स्थिति का जहां अनुभव हो, आत्मा जब ब्रह्म में है, वह स्थिति जो है उस स्थिति का अनुभव अर्थात ब्रह्मचर्य। संपूर्ण पवित्रता का संबंध संपूर्ण विकारों से मुक्ति है, ब्रह्मचर्य का संबंध काम विकार से मुक्ति है। तो आज की क्लास में हम केवल इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। संसार में यह मान्यता है कि दहकती हुई अग्नि पर चला जा सकता है, परंतु काम को नहीं जीता जा सकता। शेर को परास्त किया जा सकता है हराकर, खेलकर, लड़कर, परंतु काम को नहीं जीता जा सकता। समुद्र को पिया जा सकता है परंतु काम को नहीं जीता जा सकता। अजगर को कोई निगल सकता है परंतु काम को वश नहीं कर सकता। विश्व भर के सभी योगी तपस्वी महात्मा सभी ने प्रयत्न किए हैं, हर प्रकार से प्रयत्न किए हैं काम को समाप्त करने के, परंतु संपूर्ण सफलता बहुत कम आत्माओं को प्राप्त हुई है। मन में चित्त में किसी कोने में वासनाएं घर कर चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह ब्रह्मचर्य सहज हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि विकार की वह वासना, विकार की वह भावना, विकार की वह दुर्गंध हमेशा हमेशा के लिए हमारे मन से चित्त से संकल्प से और स्वप्न से भी नष्ट हो जाए? एक माली था जिसकी बहुत सुंदर बगिया थी, इतने सारे पुष्प थे, अलग अलग प्रकार के भांति भांति के फूल थे। वो सभी फूलों को एकत्र करता, उनका रस बनाता। वो जो पराग है, वो जो मकरंद है, उसका रस बनाता, इत्र बनाता, और हर महीने के अंत में जाकर उसको नाली में डुबो देता। तो क्या ये बुद्धिमानी है? क्या कहेंगे? इस देह में भी ऊर्जा है, इस देह में भी ऐसा ही रस बन रहा है। यदि वह रस, यदि वह ऊर्जा, यदि वह वाइटल फोर्स कोई ऐसे ही बहा दे तो उसे क्या कहेंगे? क्या वह उस मूर्ख माली की तरह नहीं? ये ऐसी ऊर्जा है प्रचंड, अगर नीचे बह जाए तो शरीरों को जन्म देती है। अगर यही ऊर्जा ऊपर बहने लगे तो शक्ति बनेगी, ओज बनेगी, तेज बनेगी। वही काम की ऊर्जा मूलाधार चक्र से निकलकर स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा चक्र से सहस्त्रार में पहुंचेगी और प्रचंड तेज और प्रचंड ओज का जन्म होगा। संसार की आत्माओं के पास यह तेज नहीं, क्योंकि शक्ति नीचे बह रही है, परंतु जो ब्रह्मचारी है, जो तपस्वी है, उनकी वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। उन्हें ऊर्ध्व रेता योगी कहा जाता है, जहां पर वह काम की ऊर्जा, वह वीर्य की ऊर्जा अपनी दिशा को बदलती है और ऊपर बहने लगती है। तब फिर व्यक्ति सभी कामुक वासनाओं से, कामुक भावों से, भावनाओं से और उस नीचे गिराने वाली सेक्सुअलिटी से ऊपर उठ जाता है। फिर उसमें एक प्रचंड ऊर्जा का प्रवाह होता है, वह वाणी फिर साधारण वाणी नहीं रहती। एक एक शब्द ब्रह्मचर्य के तेज से भरा होता है। यह शक्ति कौन सी शक्ति है? यह वह ब्रह्मचर्य की शक्ति है। व्यक्ति क्रिएटिव हो जाता है, व्यक्ति वह सब कुछ सोच पाता है जो अब तक उसे पता न था। तो तो क्या ऐसा हो सकता है। बाबा ने बहुत सूक्ष्म ज्ञान दिया है, संकल्पों के तल का ज्ञान दिया है। एक है यह ऊर्जा, दूसरा है मन और तीसरा है प्राण श्वास। तीन रीति से इसे वश में किया जा सकता है। पतंजलि योग सूत्र में जो कुछ लिखा गया है, पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर ध्यान, धारणा और समाधि, ये मार्ग भी ब्रह्मचर्य का मार्ग है। परंतु वहां पर एक शरीर है और दूसरा प्राण, प्राणों को वश में करके इस ऊर्जा को वश में किया जा सकता है। दूसरा मार्ग है केवल ऊर्जा को वश में करना, वो संपूर्ण हठयोग का मार्ग है। और बाबा ने जो तीसरे तल का मार्ग बताया वो है मन का, क्योंकि शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, सारे हार्मोन्स जो कुछ भी हो रहे, वो सब मन के अधीन है। यदि मन में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प आ जाए तो फिर ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी। हां यदि उसे कोई ट्रिगर मिल गया, हां यदि उसने कुछ देख लिया और सुन लिया, तो वो संकल्पों की ऊंची स्थिति से नीचे आता है और नीचे आते ही ऊर्जा बाहर भागती है और ऊर्जा का शरीर से जैसे ही निष्कासित होती है, एक बल जो जमा होना चाहिए था नहीं होता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण भी थे, तब क्या होता था इस ऊर्जा का, ये जो सिक्रीशंस है वो बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाते थे। इसके लिए तेज बहुत अधिक था। तो ब्रह्मचर्य एक साधना है, एक दिन कर लिया काम नहीं होगा, दो दिन कर लिया नहीं, एक भट्टी में आ गए भट्टी पूरी हो गई, इससे नहीं होगा। हर दिन की साधना है, सतत साधना है और अखंड साधना है। क्या सभी कुमार इस साधना को करने के लिए तैयार है? करेंगे ये साधना? ऐसी शक्ति का भंडार जमा होगा जो संसार आश्चर्य चकित हो जाएगा देखकर। ऐसी बुद्धिमत्ता प्रकट होगी, ऐसी स्मरण शक्ति प्रकट होगी, ऐसा तेज प्रकट होगा, ऐसी क्रिएटिविटी रचनात्मकता प्रकट होगी कि जहां कोई समस्या नहीं आ सकेगी। सारी शक्तियां हमें अनुभव होगी, संसार एक तरफ और हम एक तरफ, यह अनुभव, यह ब्रह्मचर्य का अनुभव है। शारीरिक शक्तिशाली, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, बौद्धिक रीति से, सामाजिक रीति से, आर्थिक रीति से, वैश्विक रीति से, हर तरह से उसके फायदे हैं और आत्मा में बल भरता जाएगा। तो हमें यह साधना करनी है। यदि ब्रह्मचर्य को साध लिया तो संपूर्ण पवित्रता स्वतः ही आने लगेगी। ब्रह्मचर्य अर्थात पवित्रता नहीं, परंतु हां बिना ब्रह्मचर्य के संपूर्ण पवित्रता का भी कोई अस्तित्व नहीं है। केवल ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है, वो तो केवल काम से संबंधित है। संपूर्ण पवित्रता तो बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ऊंचा है। तो क्या हम करें जिससे संपूर्ण ब्रह्मचर्य सहज हो जाए? क्या किया जाए? पहले आप बताएंगे फिर हम चर्चा करेंगे। जी वहीं बैठ के बताइए। पहले तो ये बताइए क्या संपूर्ण ब्रह्मचर्य करना सहज है, पालन करना, या कठिन लग रहा है सबको? एकदम सहज है या कठिन है? सहज है? सहज नहीं है। क्यों? जन्म जन्म के भोग के संस्कार आत्मा में है और काम विकार के जो संस्कार है सबसे अधिक गहरे हैं। क्यों? एक साकार मुरली में बाबा ने कहा है, तुमने काम विकार से जितने पाप किए हैं उतने और किसी से नहीं किए हैं। क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, ईर्ष्या द्वेष, बहुत सारी चीजें हैं, परंतु काम नंबर वन शत्रु कहा गया है। क्यों? पहले तो इसका उत्तर बताओ। क्रोध भी तो है पर काम को ही क्यों कहा गया फिर? क्या कहेंगे? क्या? इससे ही द्वापर युग में देवताएं गिरे, वाम मार्ग में गए, शक्तियां कम हुई, परंतु क्यों? काम विकार में क्यों गए ये नहीं पूछ रहे हम। हम पूछ रहे हैं काम ही इतना क्यों शक्तिशाली है, क्रोध क्यों नहीं, लोभ क्यों नहीं, मोह क्यों नहीं, अहंकार क्यों नहीं। बाबा ने कई बार कहा है, मैं पतितों को पावन बनाने आया हूं। काम कामी जो विकारी व्यक्ति है उसके लिए कहा जाता है पतित, क्रोधी के लिए पतित नहीं कहा जाता है। पांचवी मंजिल से गिरना यह क्रोधी के लिए नहीं कहा गया। भगवान आया ही केवल उसके लिए, केवल एक चीज के लिए इस संसार में, काम पतित को पावन बनाना। पतित शब्द काम विकार के लिए है वास्तव में, और किसी चीज के लिए नहीं है। तो क्यों काम का ही इतना क्यों? बाकी सभी विचार आ जाते हैं। क्यों? कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता था, वो तो क्रम है। जैसे गीता में भी चौथे अध्याय में लिखा गया है कि काम पूरी नहीं होती तो क्रोध आएगा, फिर मोह और फिर बुद्धि नाश और सब कुछ जो होगा। परंतु काम ही क्यों? काम को ही पतित बनाने वाला क्यों कहा गया? इतने कड़े शब्द, इतने कड़े महावाक्य क्रोध के लिए क्यों नहीं है, मोह के लिए क्यों नहीं है, अहंकार के लिए क्यों नहीं है? वो नष्ट होती है और मन बुद्धि चंचल होती है, और इधर से आत्मिक शक्ति खत्म हो जाती है और अपने आप को भूल जाते हैं, और वो नहीं हो पाती, और एकाग्रता नष्ट हो जाती है। एकाग्रता नष्ट हो जाती है, चित्त हिलने लगता है, वृत्तियां जो है चित्त की भटकने लगती है। और एक मुख्य कारण यह भी है कि काम विकार के लिए जितनी देहभान की आवश्यकता है उतना बाकियों के लिए नहीं है। काम विकार लस्ट इज 100% बॉडी कॉन्शियसनेस। वहां संपूर्ण देह और देह ही बच जाता है, बस आत्मा देह के तल में सुख का अनुभव करना चाहती है, स्पर्श स्पर्श का अनुभव। और जैसे ही अनुभव करती है क्षणिक सुख सेकेंड्स का, 7 सेकेंड इन फीमेल्स, 14 सेकेंड इन मेल, उस सेकेंड के अनुभव के बाद फ्रस्ट्रेशन, दुख, उदासी, निराशा, पश्चाताप। तो क्या हम करें जो संस्कार इतना अवचेतन मन में छप गया है, बैठ गया है, उसे छोटे से ट्रिगर की आवश्यकता है, छोटे से ट्रिगर की, किसी दृश्य की, किसी पोस्टर की, किसी सीन की, किसी वीडियो की, किसी क्लिप की, और वासनाएं धड़क उठती है। क्या किया जाए? उसके 4 मार्ग हैं। सबसे पहला है कंट्रोल, अर्थात नियंत्रण, दूसरा है कंजर्व अर्थात संरक्षण, तीसरा है डाइवर्ट गति बदल देना, काम की ऊर्जा को वश में करने के यह मार्ग है, और चौथा सब्लिमेशन अर्थात उदात्तीकरण, पवित्रीकरण, दिव्यकरण, डिवाइनाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन। इन चार मार्ग से यह जो काम की ऊर्जा है इसे वश में किया जा सकता है, और भगवान ने जो ज्ञान दिया है उससे ये संपूर्ण सहज हो सकता है। परंतु अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझना है कभी, क्योंकि ट्रिक प्ले होती है यहां पर। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े तपस्वी गिर चुके हैं आज तक संसार में। वो सभी महान योगी थे, ब्रह्मचर्य को जानते थे, ब्रह्मचर्य पर जिन्होंने किताबें लिखी थी वो भी गिर गए, उपदेश करते थे वो भी गिर गए। तो इसको दुर्बल शत्रु नहीं समझना है, जिसे जीतना है उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान हो। केवल इतना महावाक्य पर्याप्त नहीं है कि काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। कल मुरली में बाबा ने एक प्रश्न भी पूछा था, क्या विकार इतने प्यारे लगते हैं जो कहते हो ख्याल करेंगे? विषय है। तो सबसे पहला मार्ग है कंट्रोल, उसमें आठ बातें हैं। सबसे पहला है नियंत्रण, ऐसा कुछ कर दे कि ये आठ बातें अगर ना हो तो ब्रह्मचर्य कभी भी भंग नहीं होगा, अखंड रहेगा। और जब ब्रह्मचर्य अखंड तो पवित्रता अखंड, जब पवित्रता अखंड तो बुद्धि में प्रकाश होगा ज्ञान का। ज्ञान प्रकाश है, जहां ज्ञान है वहां अंधकार नहीं आ सकता। तो कंट्रोल में कुछ बातें हैं, शास्त्रों में भी लिखी हुई है बातें, और बाबा ने मुरलियों में अलग अलग रीति से अलग अलग जगह पर कही है। ऐसी कुछ गांठे हैं, इसको कहा जाता है गांठे, टाइज ऑफ ब्रह्मचर्य। अगर इनमें से एक भी बात होती है तो ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है। सबसे पहला है दर्शनम, देखना। सबसे पहला क्या है? देखना। जो जो आत्माएं ब्रह्मचर्य को धारण कर लेती है वो अपनी काम की पूर्ति एक दूसरे को देखकर करती है, केवल देखकर। परंतु वो देखना भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। देह को देखना अव्यक्त मुरली है 71 की। यह देह क्या है? सांप है। यह देह क्या है? सांप है, इन्वर्टेड कॉमा, सांप में विष होता है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। देखना हो तो केवल मणि को देखो, क्योंकि देह को देखोगे तो ये सांप बिना स्पर्श किए ही काटता है। अगर उस सांप ने काटा तो आईसीयू में लेके जाकर एंटी स्नेक वेनम देकर वेंटिलेटर पर डालकर बचाया जा सकता है। परंतु काम रूपी देह रूपी सांप जब काटता है तब व्यक्ति का बचना मुश्किल है, क्योंकि इच्छाएं भड़क उठती है, तृष्णाएं भड़क उठती है। जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक बेचैनी, अगर न मिले तो उसका खून भी कर सकती है आत्मा, उसको मार भी सकती है। वही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकती है, वही स्त्री, वही व्यक्ति। उसके खिलाफ कुछ भी किया जा सकता है अगर वो न मिले तो। इतनी तीव्रता काम में है, इतना वेग है उसमें, ऐसा आवेश है, ऐसा जुनून कि जिसके सामने ज्ञान और योग के बसे बसाए घर और गांव उस सुनामी के आगे नष्ट हो जाते हैं। और कहां से आता है? आंखें। पहला है दर्शन। सन्यासी के लिए नियम है, यदि उसे कोई राह चलते दिख जाए, एक बार देख लेना स्वाभाविक है, पर उसी स्त्री को दोबारा देखने की इच्छा, दोबारा देखना यह इच्छा है, और फिर से तीसरी बार पलट कर देखना वासना। पहली बार देखना स्वाभाविक, दूसरी बार देखना इच्छा, और तीसरी बार देखना वासना। हम क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? अगर देखना है तो केवल मणि को, अगर देह को ही देखना है तो देह की वास्तविकता को देखना है। क्या है इस देह में? मल मूत्र के अतिरिक्त कुछ है क्या? बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, यही उसकी वास्तविकता है। पर इसी के पीछे व्यक्ति पागल है, इसी देह के भ्रामक सौंदर्य के ऊपर अपना सब कुछ लुटा देने को राजी है, ब्रह्मचर्य से अर्जित की हुई शक्ति को। ऐसे ही किसी के चरणों में अर्पण करने को भी तैयार हो जाता है। तो सबसे पहला है दर्शन। देखना है तो केवल मस्तक मणि को देखो। अव्यक्त महावाक्य 72 की मुरली, कुमारों से मुलाकात, बाप दादा, आज से प्रतिज्ञा करो स्वयं से और बाप दादा से, मस्तक मणि के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखेंगे। तो क्या हम देख रहे हैं? क्या अब भी देखना बाकी रहा है? क्या अब भी देखना चाहते हो इस देह को, इस अस्थि पंजर को? कौन सा सौंदर्य है इसमें? भ्रामक सौंदर्य। सारा मीडिया, सारे उपन्यास, सारे टीवी चैनल्स ऐसे बता रहे हैं जैसे ये बहुत अच्छा है। जाओ जाकर देखो हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में, हजारों पड़े हुए उन पेशेंट्स को, कहां है सौंदर्य? जाओ जाकर देखो उन कैंसर पेशेंट्स को, कहां है सौंदर्य? जाओ जाकर देखो फिल्म स्टार और फिल्म एक्ट्रेस को, जो अपने जमाने में बहुत बड़े एक्टर थे और अभी वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए, बिल चुकाने वाला कोई नहीं, कहां है सौंदर्य? देखना। दूसरा, स्पर्शनम, स्पर्श करना। अव्यक्त महावाक्य 88, यदि इस देह को स्पर्श करते हो संकल्प से और नजर से, हाथ से नहीं, यदि इस देह को स्पर्श करते हो किससे? संकल्प और नजर से, तो इसे महा 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 पाप समझना। भगवान के उच्चारे हुए महावाक्य है। गीता में कहीं लिखा है, स्पर्श से उत्पन्न जो सुख है दुखों को जन्म देगा। जो जो सुख स्पर्श से उत्पन्न है, हाथ टच से उत्पन्न, टच बॉर्न हैप्पीनेस, सभी से दुख आएगा। स्पर्शनम, तीसरा केली, संस्कृत शब्द है केली अर्थात खेलना। वो आउटडोर गेम्स हो सकते हैं, इंडोर गेम्स हो सकते हैं, वो व्हाट्सएप के भी गेम्स हो सकते हैं, एक मैसेज इधर से और एक मैसेज उधर से, एक संदेश इधर गया और एक संदेश उधर से इधर, ये भी खेल हो सकता है। कभी ये नाराज कभी वो नाराज, कभी इसको मनाया कभी उसको मनाया, सभी ब्रह्मचर्य का खंडन है। इसके लिए हम कौन सा खेल खेल रहे हैं? ये सब बचपन के खेल है। बातें तो लिखी गई है स्थूल खेल के लिए, परंतु खेल स्थूल भी है सूक्ष्म भी है। यदि इस तरह का हम कोई खेल कर रहे हैं तो ये भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। खेलना, केली, चौथा प्रशंसा, स्तुति, साकार महावाक्य है मुरली के। बच्चे कहते हैं बाबा ये बहन बहुत अच्छी है, साकार महावाक्य है बाबा, बच्चे कहते हैं बाबा ये बहन बहुत अच्छी है, बहुत मीठी मुरली सुनाती है। बाप कहते हैं अरे बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है। सुने होंगे ये महावाक्य, मुरलियों में आए हैं। किसी की बहुत प्रशंसा करना, बहुत स्तुति करना, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। दादी जान की अपना अनुभव सुनाती है, जब वो नए नए थे कराची में, तो किसी एक कराची ने जब भारत आए थे किसी एक भाई का कोर्स कराया और ब्रह्मा बाबा को जाकर बताया, बाबा इस भाई का कोर्स कराया है, ये भाई बहुत अच्छा है, इस भाई ने इतना अच्छे से ज्ञान सुना है, इसका स्वभाव भी बहुत मीठा है, बाबा इसको एकदम तीर लग गया। बाबा ने कहा बच्ची तीर उसको लगाया या तुमको? प्रशंसा, यह भी आसक्ति को जन्म देगा। पिछले संडे की मुरली में था ना, लगाव झुकाव, एक तरफ घृणा और एक तरफ लगाव झुकाव। किसी को सहारा बना देना, किसी को आधार बना देना, वही चाहिए। उसी से प्यार की कामना है, केयर की कामना है, अटेंशन की कामना। एक व्यर्थ संकल्प एक व्यर्थ संबंध को निर्माण करता है। स्पीकर बन सकते हैं परंतु स्पीड नहीं आएगी, सेंसिबल बन सकते हैं परंतु इसेंसफुल नहीं बन सकते। लास्ट संडे की मुरली, सफलता मूर्त बन सकते हैं परंतु विघ्न विनाशक नहीं बन पाएंगे। लगेगा कि सेवा में आगे बढ़ रहे हैं परंतु कर्म बंधन में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे एक आत्मा दूसरी आत्मा को कुछ देती है तो बंधन होता है, वैसे ये भी बंधन है। लगाव और झुकाव का बंधन, आसक्ति का बंधन, अटैचमेंट का बंधन। तो एक की ही स्तुति करना या एक्स्ट्रा स्तुति करना, ये थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है। अगर उसको कुछ हो जाता है तो इधर दर्द। पांचवा गुह्य भाष्य, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। अगर हमारा मोबाइल किसी के हाथ में चला गया तो डर लगता है कुछ देख ना ले सब कुछ। क्यों? प्राइवेट टॉक्स, कोई आवश्यकता है? 3 मिनट से ज्यादा किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है, और वो बात भी सेवा से संबंधित, बस हां और ना, हां जी और ना जी, दैट्स इट। क्योंकि वो अगर बढ़ेगा, जितना व्यक्तियों से शेयर करना चालू करेगी आत्मा, ऊपर वाले से शेयर करना अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, कोई इस कोने में, कोई उस कोने में, कोई इधर अंधेरे में, कोई उधर अंधेरे में, यह भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। लाइफ शुड बी एन ओपन बुक, क्या छिपाना है। छठवां संकल्प, समीप जाने का संकल्प, मीटिंग्स करने का संकल्प, मिलने का संकल्प एकांत में, संकल्प। पहली इतनी बातें हो गई तो अपने आप ये तो आ गया, आएगा फिर। और अगला है अध्यवसाय, संस्कृत शब्द है अध्यवसाय, अर्थात निकट जाना, एप्स क्रिया। एक है संकल्प, छठवा, सातवा है निकट जाना, और आठवा द एक्चुअल एक्ट, क्रिया निवृत्ति। ये 8 बातें हैं ब्रह्मचर्य की। इनमें से कोई भी एक बात का यदि खंडन हो रहा है तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। ब्रह्मचर्य की दूसरी परिभाषा, इन 8 बातों को अवॉइड करना हर स्थान में, हर समय, हर परिस्थिति में। All places, all situations, all time is called as ब्रह्मचर्य। यह ब्रह्मचर्य की परिभाषा है। हर समय, हर स्थान में और हर स्थिति में इन सबसे दूर रहना, अर्थात ब्रह्मचारी। तो पहली बात थी कंट्रोल, कंट्रोल में ये सारी बातें आ गई। इसकी और विस्तृत चर्चा आगे की क्लास में करेंगे। दूसरा है कंजर्व, कंजर्व अर्थात संरक्षण। जो जो चैनल्स है जिससे एनर्जी बह रही है, उसको स्टॉप करना। क्या वो टीवी है, क्या वो मोबाइल है, क्या वो इंटरनेट है, क्या है, पोस्टर है, क्या है, कंपनी है, फोन है किसी का, क्या है, कोई दृश्य है, क्या है। जहां जहां से मन में विकार के संकल्प उत्पन्न होते, जरूर कोई ना कोई ट्रिगर है, बिना ट्रिगर के नहीं आता है। यहां जब आप बैठे हुए तो यहां नहीं आएगा, परंतु यहां से जब बाहर निकल जाते हैं संसार के वातावरण में, जहां पर वासनाओं की हवाएं हैं, वहां मन उस श्रेष्ठ संकल्प में नहीं रहता, भूला हुआ रहता है, विस्मृति में रहता है, याद नहीं रहता है कुछ, और वहां पर विकार के संकल्प आते हैं। वहां पर फिर दर्शन होता है, फिर स्पर्श होता है, फिर गुह्य भाष्य, सब कुछ। संपूर्ण पवित्रता अर्थात संपूर्ण ब्रह्मचर्य। कहां से जा रही है शक्ति? भोजन से जा रही है बाहर? कहां से जा रही है स्वाद लोलुपता? कहां से जा रही है किसी का संग, कोई स्थान, कोई व्यक्ति, जो हमने कहा है ये सेवा का संबंध है, परंतु गहराई में विकार है कहीं ना कहीं। यदि ऐसा कोई संबंध है तो इस संबंध को पहले कट कर दो। जिस वासना को हमने प्रेम की संज्ञा दी है गलती से, व्याकरण ही बदलने की आवश्यकता है। नाउन में प्रॉब्लम है, नाम ही गलत दिया है। है वासना, नाम रखा है सेवा, सजा के रखा है उसे, सेवा का संबंध है, परंतु गहरे तल में इच्छाएं हैं। तो दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी के जितने लीकेजेस हैं क्या करना है, उनको बंद। कोई किताब है उसको बंद कर दो, कोई सीरियल है उसको बंद कर दो, कोई मूवी है उसको हमेशा के लिए तिलांजलि समाप्त कर दो। क्या है, क्या है जो चित्त में आंदोलन बना क्रिएट करता है, हलचल उत्पन्न करता है, भयंकर हलचल, आवेग, जैसे एक गुफा है। हम राह पर चल रहे, बीच में एक गुफा आ गई, दरवाजा खुला, गुफा के अंदर प्रवेश किए। यह देह अभिमान की गुफा है, इसमें विकार उत्पन्न हुए, मन में विकार के संकल्प। गुफा से बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद दरवाजा बंद होते हैं, सोचते हैं क्यों हुआ, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो मन में शुद्ध संकल्प है। परंतु फिर भी अपने आप दरवाजा खुलता है और अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते, फिर आगे बढ़ने लगते हैं। एक मास ठीक, दो मास ठीक, फिर से दरवाजा खुलता है, फिर से अंदर प्रवेश करते, फिर से बाहर आते, और फिर से वही पश्चाताप। क्या ऐसा नहीं है? क्या इस गुफा को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है? कौन खोलता है? कोई ना कोई ट्रिगर, कोई ना कोई स्टिमुलस मन में आता है और गुफा खुलती है। एंट्री, एग्जिट, एग्जिट के बाद रिपेंटेंस, पश्चाताप, टाइम वेस्ट, हेडेक, अनइजीनेस, बेचैनी, समय बर्बाद, समय, संकल्प, वीर्य, सब कुछ बर्बाद, और पश्चाताप, आत्मग्लानी, अपराध भाव, श्रीमत से दूर हो जाने की का भाव। तीसरा, डाइवर्ट द एनर्जी। जो काम की ऊर्जा है उसको क्या करो, अब डाइवर्ट करो, उसको नीचे नहीं जाने दो, उस मूर्ख माली की तरह उसको डाइवर्ट करो। और डाइवर्टशन का बेस्ट मार्ग है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अपने आप को ज्ञान में बिजी कर दो, योग में बिजी कर दो, सेवाओं में बिजी कर दो, सेवाओं से भी ज्यादा ज्ञान में। जितना ज्ञान का चिंतन अब हम कर रहे बिल्कुल कम है, इतने से काम नहीं होगा। ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, प्रकाश को लाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही अंधकार आया, वो जो मेमोरीज है सबकॉन्शियस में, वहां से निकलकर बाहर आती है, और वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो अवचेतन मन है, अर्धचेतन मन है, जन्म जन्म में जो कुछ किया है सब उसमें है। एक अंधा व्यक्ति, जन्मांध जो है, बचपन से जो अंधा है, वो भी काम से मुक्त नहीं है। क्यों? उसने तो कभी चेहरा ही नहीं देखा है, फिर क्यों? क्या कारण है, क्या कारण है? एक व्यक्ति जो जन्म से ही अंधा है, कभी उसने रूप ही नहीं देखा, चेहरा ही नहीं देखा किसी का, फिर भी उसमें विकार है, क्यों? क्योंकि माइंड में सब कुछ स्टोर्ड है, इसके लिए गृहस्थ वे जो रहते हैं भले ज्ञान में आ जाए, जो युगल होते हैं ज्ञान में तो आ जाते हैं, परंतु विकारों की स्मृतियों का क्या? एक गृहस्थी भगवान से प्रार्थना करता था रोज, भगत था बहुत बड़ा, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। एक दिन भगवान प्रकट हो गए और वो भगवान मुझसे कहते हैं कि मन्नत मांग, जो चाहिए मैं तेरी मन्नत पूरी करूंगा। तो वो गृहस्थी कहता है मैं गृहस्थी हूं, मुझे वापस कुमार बना दो। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें मन्नत मांगने को कहा था, जन्नत नहीं। तो कुमार जीवन अर्थात उल्टी सीढ़ी चढ़ी ही नहीं है, अर्थात वो विकारों में गए ही नहीं है, उधर का अनुभव ही नहीं है, क्योंकि जिनका वो अनुभव है उस एक्सपीरियंस से मुक्त हो ही नहीं पाते। कितना ज्ञान योग करो, सेवा करो, सब कुछ करते हैं, परंतु अंदर ही अंदर द्वंद्व है, क्योंकि मेमोरीज तो है, मेमोरीज है, मेमोरीज का क्या? उसके लिए तो बहुत जबरदस्त तपस्या और ज्वालामुखी योग चाहिए, तब जाके वो सारी मेमोरीज सारी स्मृतियां नष्ट होगी। हल्के फुल्के ज्ञान योग से नहीं होने वाला है वो, खाली सेवा करते रहे उससे तो कभी नहीं होगा। श्रेष्ठ चिंतन चाहिए, मनन चाहिए, अध्ययन चाहिए, तपस्या चाहिए, संकल्प चाहिए, वातावरण चाहिए, सब कुछ चाहिए। और कईयों ने किया भी है, कईयों ने किया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, परंतु अंदर ही अंदर संघर्ष होता है। ऊपर से तो हम पवित्र हैं और हम ज्ञान में चल रहे हैं, परंतु अंदर द्वंद्व। ऊपर से प्राइज भी मिल गया, प्राइज देते हैं ना पवित्र, परंतु सूक्ष्म है बहुत। इनको उसी सूक्ष्म रूप से जानना है और उसी सूक्ष्म रूप से उन्हें नष्ट भी करना है। तो तीसरा है डाइवर्ट, एनर्जी को डाइवर्ट करने का मार्ग है ज्ञान, मनन, अध्ययन, चिंतन। आज शाम को हम आज की मुरली रिवाइज करेंगे, इस बीच में जो गैप होगा सभी लोग उस मुरली को अच्छे से पढ़ के आना, और जैसे ही उस मुरली को अच्छे से पढ़ेंगे आप देखेंगे शाम तक आपकी स्थिति बहुत ऊंची चली जाएगी। स्वतः ही ज्ञान चिंतन से डाइवर्शन हो जाता है अपने आप। और चौथा है सब्लिमेशन, इस काम विकार के को नष्ट करने के लोगों ने कई मार्ग ढूंढे हैं। एक मार्ग है दमन, दबा देना उसको, एक मार्ग है दमन का मार्ग, निकलने ही नहीं देना, बस दबा देना। परंतु जिस जिसने दमन किया वो ऊर्जा प्रचंड होकर निकलती है और सब कुछ नष्ट कर देती है एक दिन, क्योंकि इस ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। वो गंगा उस नदी की तरह है, उसको सागर में मिलना है, परंतु आप यदि सोचे मैं इसको यहीं रोक दूं तो नहीं होगा। रूपांतरण हो सकता है, उदात्तीकरण हो सकता है, सब्लिमेशन हो सकता है, नॉट सेपरेशन बट सब्लिमेशन। जिस जिसने इसको दबाने का प्रयत्न किया है सब विफल हुए हैं। अमेरिका में एक सन्यासियों का ग्रुप है फ्लैजिस्ट, अपने पास एक चाबुक रखते हैं, जैसे ही विकार का संकल्प उत्पन्न हुआ स्वयं को कोड़े से मारते हैं, सेल्फ पनिशमेंट। परंतु कुछ समय के बाद कुछ और ही हो गया, जितना विकार का संकल्प उत्पन्न हुआ कोड़ा लिया, स्वयं को मारने लगे, लहूलुहान, और जब लहूलुहान हो जाते थे फिर पता चला कि वो वासना और ही ज्यादा भड़क रही है, उल्टा ही होने लगा, वो मारने लगे किस लिए, क्योंकि ये उत्पन्न हुई। और आश्रम के नियम, आश्रम की मर्यादा है, जो सन्यासियों के मठ वहां है उनके नियमों में पहला नियम ब्रह्मचर्य है, और ये हो रहा है तो मारने लगे और फिर उल्टा ही होने लगा। जिसने दमन किया है उसमें विक्षिप्तता उत्पन्न होती है। संसार भर के मेंटल हॉस्पिटल में जाओ, सेक्सुअल सप्रेशन हुआ है सब जगह पर, और जब वो सेक्सुअल सप्रेशन होता है तब विक्षिप्तता, इंसेनिटी, पागलपन उत्पन्न होता है, क्योंकि इस ऊर्जा को समझा ही नहीं, दबा दिया बस, और वो है ही वहां धधकती हुई अग्नि की तरह। अवसर की तलाश है, अवसर मिला और बाहर, अवसर मिला और बाहर। इसके लिए सब्लिमेशन ऑफ दिस एनर्जी, इस सब्लिमेशन के लिए, इस उदात्तीकरण के लिए, डिवाइनाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी इनटू स्पिरिचुअल एनर्जी, ये लक्ष्य है। इस सब्लिमेशन के लिए इस काम को भी समझना होगा, क्या है, कैसे है, कब आता है, कहां से आता है, क्यों आता है, और वास्तव में उसमें है क्या। ऐसा सारा ही संसार, एक भी व्यक्ति नहीं है जो काम से मुक्त है। वास्तव में आत्मा की जो प्यास है वो सुख की है। यदि उसे अतींद्रिय सुख न मिले तो वो इंद्रिय सुखों के पीछे जाएगी, और जो ब्राह्मण बन चुके हैं, ज्ञान में आ गए, वो भी यदि श्रेष्ठ तपस्या न करे और उनको अमृत वेले हर दिन यदि अतींद्रिय सुख नहीं मिला तो सारे दिन भर इंद्रिय सुख खींचेगा, किसी की देह खींचेगी, किसी की देह याद आएगी, कल्पना करेगी, सेक्सुअल फैंटेसीज। ये एक बहुत बड़ा रोग है, सेक्सुअल फैंटेसी, अर्थात कल्पना करना, स्वप्न देखना, किसी के साथ घूम रहे, कुछ कर रहे, कुछ कर रहे, हाथ लगा रहे, और अपनी वासना को तृप्त करना, दिस इज नोन एज सेक्सुअल फैंटेसीज। क्यों आज सारे विश्व भर में इतने सारे इंटरनेट एडिक्ट बन गए हैं, वो आधार बनाकर अपनी कल्पना को का विस्तार, उसका कोई अंत नहीं, और फिर क्लास में आकर बैठते हैं और मुरली में सुनते हैं काम महाशत्रु है, फिर से आत्मग्लानी, फिर से अपराध भाव, कि हम सोच क्या रहे हैं और बाबा कह क्या रहा है। हमने कई सारे कुमारों को देखा है, गिरते हुए, उठते हुए, फिर गिरते हुए, फिर उठते हुए। विदेश में एक भाई थे, जयंती बहन ने एक बार अनुभव सुनाया था, बहुत जिन्होंने अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सेवाएं की, बड़ी बड़ी सेवाओं के निमित्त बने हुए कुमार, और अचानक एक दिन कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे सेंटर में, रस खत्म हो गया, सेवाओं में भी रस नहीं। पूछते थे तो कहता था कि बाबा डजंट वांट मी टू डू एनीथिंग एनी मोर, शायद बाबा नहीं चाहता कि अभी मैं और भी कुछ सेवा करूं, बहुत सेवा कर ली, ऐसा वो कहता था, पर चेहरे से उदासी थी। पूछा, दो तीन बार बताया नहीं, फिर एक बार एक बहन को उसके साथ बिठाया काउंसिलिंग के लिए, तो उसने बताया कि पिछले 2 मास से मुझे एक नई आदत लग गई है, रात में सारे दिन भर सेवाएं करता हूं, थक जाता हूं तो टीवी लैपटॉप ऑन करता हूं, उसमें यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूं, और वो देखते देखते 10 के 11 और 11 के 12 और 12 का एक कब बज जाता है पता ही नहीं चलता है, और जब उठता हूं, उठता भी वो अमृत वेला परंतु उदासी, कोई अनुभव नहीं, कभी उठता हूं कभी नहीं भी उठता हूं, फिर मुरली में रस खत्म, इच्छा नहीं होती है सेवा करने की। समझना है स्वयं को, तो सब्लिमेशन की जो प्रोसेस है बहुत बड़ी प्रोसेस है, एक शब्द में नहीं कहा जा सकता। सारा ही हमारा ज्ञान योग जो है वो सब्लिमेशन है। तो ब्रह्मचर्य के लिए, संपूर्ण ब्रह्मचर्य के लिए ये सारी ही बातें आवश्यक है। कंट्रोल, जहां जहां वृत्ति जाती है, भटकती है, उसको रोकना है, वहां से उसको समझाना है, उससे बात करना है, उसका दमन नहीं करना है, उसको दबा नहीं देना है। कहां आकर्षित हो रही है उससे बात करो, देखो तो उस देह को, ये देह क्या है, इसमें क्या भरा है, इसमें कहां है सौंदर्य जब व्यक्ति मर जाता है और उस लाश को कुत्ते घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वेयर इज द ब्यूटी? मृत्यु का चिंतन, बुढ़ापे का चिंतन और बीमारी का चिंतन, ये तीन चीज इस देह के प्रति वैराग उत्पन्न करेंगे। तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य की सबसे पहले प्रतिज्ञा करनी है। कंट्रोल में जो आठ बातें बताई है, यदि उन आठ में से किसी एक का भी हम उल्लंघन कर रहे, खंडन हो रहा है जीवन में, उसको रोकना है। ऐसी कुछ आदतें अगर है उसको स्टॉप कर देना है। ऐसे कुछ सोशल मीडिया में इतने भटक गए हैं सोशल मीडिया के जंगल में, और हम ये कहते हैं कि उसमें अच्छी अच्छी बातें भी आती है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, विदेश के एक ऑथर ने, कि सत्य इतना सस्ता नहीं कि सोशल मीडिया पे मिल जाए, सत्य साधना से मिलता है। तो कंट्रोल, कंजर्व द एनर्जी बाय ब्लॉकिंग ऑल द होल्स, जितने ब्लॉकेजेस है सबको रोकना। तीसरा, डाइवर्ट करना है अपने माइंड को क्रिएटिव एक्टिविटीज में, रचनात्मक एक्टिविटीज, हार्ड वर्क। स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा कि आप इतने युवा हो, सन्यासी हो, क्या काम विकार आपको नहीं सताता? उन्होंने सुंदर उत्तर दिया था कि मैं अपने आप को इतना व्यस्त रखता हूं काम में कि काम विकार तो रोज ही आता है घर के बाहर, कहता है आऊं, मैं कहता हूं थोड़ी देर के बाद, इतना काम पूरा कर लेता हूं, रुक रुक के बेचारा चला जाता है। बिजी कर देना स्वयं को, हार्ड वर्क में बिजी, पसीना आना चाहिए ऐसा हार्ड वर्क, ताकि सोने जाओ तो नींद आ जाए, फिर स्वप्न देश दोष नहीं होगा। इतनी थकान हो, हार्ड वर्क, क्रिएटिव वर्क, सेवाओं में स्वयं को लगा दो, चिंतन में स्वयं को लगा दो, मनन में, अध्ययन में। अपना एक ग्रुप बनाना है, दो लोग लगते हैं ग्रुप बनाने के लिए, रोज शाम को ज्ञान की चर्चा करना है। अगर दो से ज्यादा है तो बहुत अच्छा, परंतु रोज शाम को 8:30 से 9 या 9 से 9:30 या 9:30 से 10 आधा घंटा बैठकर आज की सुबह की मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा, हमारे मुख से निकलना चाहिए ज्ञान, क्योंकि ज्ञान जब निकलेगा तो ही स्पष्ट होगा और ज्ञान के नए संस्कार बनेंगे। सुन बहुत लिया, लिख बहुत लिया, अभी चर्चा करनी है उसकी। तो एक ग्रुप हो दो लोगों का जिसमें ज्ञान की चर्चा करे। और चौथी बात थी सब्लिमेशन, उदात्तीकरण। तो ब्रह्मचर्य की ऐसी ये चार बातें हैं। अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद एक दूसरा विषय है, इसको यहीं पर कहीं चिपका दीजिए, आज दिन भर का ये टाइम टेबल है, बाद में कोई तो ठीक है। इसके बाद दूसरा हम क्लास लेंगे, साधना के आसमान में वैराग की उड़ान, साधना के आसमान में वैराग की उड़ान। ओम शांति।